ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अध्याय 19 संयोगिता हरण। महोबा का युद्ध समाप्त हो चुका था। महोबा तथा कालिंजर पर पृथ्वीराज ने अपना अधिकार जमाया और उन्हें केवल अपना कर देने वाले राज्य बनाकर वह राज्य फिर से परिमाल देव को सौंप दिया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हो चुकी थी। इस जीत के कारण दिल्ली में कुछ दिनों तक खुशी के उत्सवों की धूम मच रही थी। इस धूमधाम के कारण तथा बार बार पृथ्वीराज की जीत होने के कारण जयचंद मन ही मन और जल रहा था। एक तो पृथ्वीराज की यह कीर्ति कथा जयचंद का मन महसूस ही रही थी, दूसरा संयोगिता के द्वारा जो अपमान हुआ था उस अपमान ने जयचंद का माथा और भी झुका दिया था। जो पृथ्वीराज उसके हिस्से का राज्य हजम करने वाला, बार बार उसे नीचा दिखाने वाला और युद्ध क्षेत्र में पराजित करने वाला था, जिसके कारण उसका राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सका था, जिसने उसके भाई बालुका राय को मार दिया था, जिसने हर कदम पर जयचंद को अपमानित किया था और जिसे अपमानित करने के लिए जयचंद ने अपने राजसूय यज्ञ में सोने की प्रतिमा बनवाकर दरवाजे पर रखवा दी थी, उसी अपने पिता के शत्रु अपमान करने वाले, गर्व करने वाले पृथ्वीराज की स्वर्ण प्रतिमा के गले में जयमाला डालकर संयोगिता ने अपने हाथों अपने पिता का जो अपमान किया था वह कभी भूलने वाला नहीं था। जयचंद उस अपमान की जलन से तड़प रहा था, परंतु कुछ कर नहीं सकता था। बात यह थी कि जब बहुत कहने पर भी पृथ्वीराज जयचंद के राजसूय यज्ञ में नहीं आए और बालुका राय को मारकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, तब उसी समय देश विदेश के राजाओं के उपस्थित रहने के कारण संयोगिता का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में 3-3 बार सभी राजाओं का विशेष गुण बताया गया, परंतु पृथ्वीराज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। फिर भी संयोगिता ने जो पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी बहुत सुन चुकी थी, पृथ्वीराज के उपस्थित नहीं रहने पर भी उनकी स्वर्ण प्रतिमा के गले में जयमाला पहनाकर उन्हें वरण कर लिया। यह बात जयचंद को बहुत बुरी लगी और उसने संयोगिता को गंगा के किनारे एक महल में कैद कर दिया। यह सारा समाचार एक ब्राह्मण द्वारा पृथ्वीराज को भी पता चला कि उनका इस तरह अपमान किया गया है, परंतु उस समय वे कुछ भी नहीं कर सके। यह बात लगातार उनके दिल में कांटे के समान चुभती रही कि इतना अपमान होने पर भी वे जयचंद का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अंत में उन्होंने कविचंद को बहुत कहा और अपने साथ राठौर राजधानी कन्नौज ले चलने के लिए आग्रह किया। कविचंद ने महाराज पृथ्वीराज को हर तरह से समझाया। उसने कहा, जयचंद के बल और पराक्रम को आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि उसकी थोड़ी सी सेना ने आपके राज्य में कितनी हलचल मचा दी थी, सैकड़ों गांव जला दिए थे और आपकी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाया था। इसीलिए आपका वहां जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। बेकार ही कोई ताल ठोक कर क्या कोई यमराज का सामना करने जाता है। हालांकि कविचंद ने बहुत तरीके से समझाया, परंतु पृथ्वीराज ने एक नहीं मानी और कन्नौज जाने के लिए आग्रह करने लगे। अंत में लाचार होकर कविचंद को उनके मन की करनी ही पड़ी। इसके कुछ ही दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर पृथ्वीराज चंद बरदाई तथा अपने अन्य सामंतों के साथ वेश बदल कर कन्नौज की ओर चल पड़े। हालांकि जिस समय वे घर से निकले उस समय बहुत सारे अपशगुन हुए, परंतु पृथ्वीराज दूसरे सामंतों के मना करने पर भी बिल्कुल नहीं माने और लगातार बढ़ते ही चले गए। किसी किसी समय ईश्वर भी मनुष्य को कितनी ही बातों द्वारा भविष्य में होने वाले काम का आभास करा देता है और पहले से ही सावधान कर देता है। इन्हीं कामों का नाम शकुन या अपशगुन रखा गया है। हालांकि बहुत सारे अपशगुन होते जा रहे थे और बहुत सारे कारणों से पृथ्वीराज तथा उनके सामंतों के दिलों में यह विचार उत्पन्न होता जा रहा था कि इस काम का परिणाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी पृथ्वीराज के सिर पर संयोगिता के प्रेम का जो भूत सवार था वह उन्हें इस पूर्वाभास पर कुछ भी ध्यान देने ही नहीं दे रहा था। परंतु सारे सामंत आदि परिणाम अच्छी तरह समझ रहे थे। वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि इस बार जिंदा लौट आना आसान काम नहीं है। सबको पहले से ही भविष्य में आने वाले संकटों का आभास हो रहा था। जो भी हो, पृथ्वीराज कविचंद के साथ कन्नौज जा पहुंचे। पहले उन्होंने वेश बदले हुए ही सारा कन्नौज नगर देखा, फिर जयचंद की 10,000 सेना देखी जो उसके राज्य के स्तंभ के समान थी। उसे देखकर पृथ्वीराज का वीर हृदय भी कांप उठा। परंतु अब क्या हो सकता था? अब तो जिस काम के लिए घर से चले थे उसे पूरा करना ही जरूरी था। कन्नौज नगर के बाहर ही उन लोगों ने डेरा डाला। पृथ्वीराज कविचंद के नौकर का वेश बनाकर जयचंद का दरबार देखने जाने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वीराज ने इस समय यह बहुत ही अनुचित काम किया। कविचंद पृथ्वीराज को साथ लिए हुए जयचंद के दरबार के द्वार पर जा पहुंचे। द्वारपाल द्वारा कविचंद के आगमन की सूचना राजा जयचंद के पास भेजी गई। जयचंद कविचंद की बहुत प्रशंसा सुन चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने कवि को भेजकर पहले कविचंद की योग्यता की परीक्षा कराई और फिर उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में कविचंद से जयचंद ने बहुत सारी बातें पूछी। कविचंद ने उनका पूरा पूरा उत्तर देते हुए उनकी प्रशंसा की। इसके बाद और भी कुछ कहने के बाद कविचंद ने पृथ्वीराज की साथ में ही प्रशंसा करके अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया, जिसे सुनकर जयचंद की आंखें लाल हो गईं और वो भयानक रूप से उत्तेजित हो गया। कविचंद ने पृथ्वीराज की प्रशंसा इतने जोरदार शब्दों में की थी कि वास्तव में जयचंद ईर्ष्या के कारण बहुत ही जल उठा था। उसने दांत पीसते हुए छाती पर हाथ रखकर एक ठंडी सांस ली और कविचंद की ओर देखकर कहा, यदि पृथ्वीराज मेरे सामने आए तो बताऊं। पृथ्वीराज तो सेवक के वेश में कविचंद के पीछे ही खड़े थे। जयचंद की यह बात सुनकर वे भी गुस्सा हो गए। हालांकि उन्होंने खुद को बहुत संभाला, परंतु उनकी आंखें बदल गईं। उनकी यह हालत देखकर जयचंद के मन में संदेह हो गया कि शायद पृथ्वीराज भी चंद के साथ है। परंतु वे मन ही मन सोचने लगा कि पृथ्वीराज जैसा प्रतापी पुरुष कविचंद का सेवक बनकर मेरे यहाँ आखिर क्यों आएगा। इसी बीच एक घटना और भी घट गई। कुछ दासियां पान लेकर दरबार में आईं। उनमें कर्नाटकी भी थी। कर्नाटकी की यह प्रतिज्ञा थी कि पृथ्वीराज के अलावा और किसी के सामने घूंघट नहीं काढ़ूंगी। जैसे ही वह आई और उसकी नज़र पृथ्वीराज पर जा पड़ी, वैसे ही तुरंत उसने घूंघट काट लिया। यह देखकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके मन में संदेह हो गया कि कविचंद के साथ किसी न किसी वेश में पृथ्वीराज जरूर ही इस दरबार में उपस्थित हैं। यह संदेह सबके मन में अचानक उत्पन्न हो गया। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे। बहुत लोगों ने तो साफ साफ ये कह दिया कि इन सबको पकड़ कर रखना चाहिए, परंतु जयचंद ने सबको रोक दिया। कविचंद ने इशारे में ही कर्नाटकी को समझा दिया कि यह काम तुम खराब कर रही हो। कविचंद का इशारा समझकर कर्नाटकी ने तुरंत माथा खोल दिया। जब उससे इस बारे में पूछा गया तब उसने उत्तर दिया कि कविचंद पृथ्वीराज के अंतरंग साथी हैं, मैं उनकी आधी इज्जत रखती हूँ और इसीलिए एक बार घूंघट डालकर फिर उतार दिया। हालांकि उस समय बात दबी रह गई, परंतु जयचंद के मन का संदेह दूर नहीं हुआ। उसने हालांकि कविचंद की बहुत खातिर की और बहुत आदर से नगर के पश्चिम भाग में उसे रुकवा कर और उसका जितना हो सका उतना अतिथि सत्कार किया, फिर भी उसने अपने लोगों को कविचंद के साथियों पर नजर रखने की आज्ञा दे दी। उन लोगों ने जयचंद को समाचार दिया कि कविचंद के साथ उसका एक विचित्र नौकर है जिसके ठाट बाट रहन सहन और शान शौकत कविचंद से भी ज्यादा हैं। पृथ्वीराज हालांकि नौकर बनकर कन्नौज गए थे, परंतु वे अपने ठहरने की जगह पर उसी राजसी ठाट बाट से रहते थे तथा दूसरे सामंत और सरदार उनसे वहां राजा के समान ही व्यवहार करते थे। एक दिन पृथ्वीराज बहुत ठाट बाट से ऊंचे आसन पर बैठे थे कि तभी जयचंद के एक दूत ने उन्हें देख लिया और उसको यह समाचार दे दिया कि कविचंद के साथ पृथ्वीराज भी जरूर आए हैं। जयचंद के मन में तो पहले से ही संदेह था, परंतु अब उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया। उसने अपने खास सैनिकों को तैयार होने के लिए कहा और राज कवि चंद को विदाई देने और उसका सत्कार करने के बहाने बहुत सारा धन, रत्न, हाथी, घोड़े लेकर कवि चंद के रुकने के स्थान की ओर रवाना हुआ। उसने अपने सैनिकों को समझा दिया कि देखना, कवि चंद का कोई भी साथी भागने नहीं पाए और सब के सब पकड़ लिए जाएं। जयचंद जब अपने साथियों सहित कवि चंद के पास पहुंचा, तब थोड़ी देर तक तो शिष्टाचार की बातें होती रहीं। उसके बाद कवि चंद ने पृथ्वीराज को जयचंद को पान देने के लिए कहा। कवि की आज्ञा पाकर पृथ्वीराज ने तुरंत ही पान जयचंद के आगे लाकर रख दिया, परंतु बाएं हाथ से। जयचंद नौकर वेशधारी पृथ्वीराज की यह ढिठाई देखकर जल भुन गया, परंतु ऊपर से प्रसन्नता दिखाता हुआ पृथ्वीराज को गौर से देखने लगा। इसी तरह के और भी काम हुए, परंतु जयचंद ने उस समय कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पृथ्वीराज ने इस ढंग से अपना वेश बदल रखा था कि जयचंद गौर से बार बार देखने पर भी उन्हें पहचान नहीं सका था। वह यही सोचकर आगे पीछे हो रहा था कि यदि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और कवि चंद के साथ पृथ्वीराज नहीं हुए तो अपमानित और लांछित होना पड़ेगा। इसी तरह सोचते विचारते जयचंद बिना कुछ गड़बड़ किए ही अपने राजमहल में वापस लौट गए और मंत्री सुमंत से बोले, पृथ्वीराज को पकड़कर जरूर ही मार डालना चाहिए, इससे संयोगिता की भी आशा खत्म हो जाएगी और एक शत्रु हमेशा के लिए संसार से चला हो जाएगा। सुमंत ने उन्हें बहुत समझाया। उसने कहा, यह कभी भी संभव नहीं है कि इतने बड़े प्रतापी राजा पृथ्वीराज कवि चंद के नौकर बनकर आएंगे। उन्हें ऐसी क्या जरूरत आ गई है, इस बारे में कवि चंद से ही पूछना चाहिए, आशा है कि वे झूठ नहीं बोलेंगे। यह बात जयचंद को पसंद आ गई। उसने कवि चंद को बहुत आदर से बुलवाया और उससे पूछा कि क्या पृथ्वीराज तुम्हारे साथ में हैं। कवि चंद ने बहुत ही ओजस्वनी भाषा में पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी सुनाते हुए कह दिया कि वे समय कन्नौज में ही हैं तथा उनके साथ 11 लाख योद्धाओं को बात ही बात में मार गिराने वाले 1100 सैनिक तथा सामंत भी हैं। इतना सुनते ही जयचंद ने कवि चंद को तो विदा कर दिया और सुमंत को तुरंत सेना तैयार करने की आज्ञा देकर खुद अपने महल में चला गया। थोड़ी ही देर बाद जयचंद के भांजे सहसमल की अधीनता में बहुत सारी सेना पृथ्वीराज के ठहरने के स्थान को घेरने के लिए चल पड़ी। पृथ्वीराज तथा उनके सामंतों ने भी यह समाचार सुना। तुरंत ही लंगरी राय भी युद्ध के लिए पृथ्वीराज की ओर से आगे बढ़ा। उसने बहुत ही वीरता से युद्ध किया। सहसमल मारा गया और लंगरी राय भी मारे गए। इस युद्ध में जयचंद का मंत्री सुमंत भी मारा गया। भांजे तथा राजमंत्री की मृत्यु और हार का हाल सुनकर जयचंद और भी क्रोधित हो उठा। उसने अपनी हिंदू और मुसलमान सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दी और खुद भी युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। युद्ध शुरू हो गया। इस बार पंगु राय ने सेनापति का भार ग्रहण किया। पृथ्वीराज पंगु राय पर युद्ध का भार सौंप कर खुद नगर देखने के लिए चले गए। सामंतों ने पृथ्वीराज को अकेले नहीं जाने देना चाहा, परंतु पृथ्वीराज उनका कहना ना मानकर घोड़े पर सवार होकर कन्नौज नगर के गंगा किनारे वाले एक महल के पास जा पहुंचे। इस महल से स्त्रियां झांक झांक कर युद्ध भूमि का हाल देख रही थीं। पृथ्वीराज तो उधर गए और इधर शत्रु सेना कवि चंद के ठहरने के स्थान के पास जा पहुंची। उन सब ने चौहान सेना को चारों ओर से घेर लिया। जयचंद प्रबंध करके लौट गया और इधर युद्ध होने लगा। भयानक युद्ध हुआ। जयचंद की ओर के 2000 सैनिक मारे गए। वहीं पृथ्वीराज की ओर के भी कई सामंत मारे गए। पृथ्वीराज घूमते घूमते ठीक उस स्थान पर जा पहुंचे जहां गंगा के किनारे एक महल में संयोगिता बंदी की तरह रहती थी। वे उस स्थान पर जाकर मछलियों का तमाशा देखने लगे। उधर पहले से ही संयोगिता तथा उसकी सहेलियां भी पृथ्वीराज को गंगा के तट पर बैठा हुआ देख रही थीं। वे पृथ्वीराज को पहचानती नहीं थीं। संयोगिता तो उनका कामदेव के समान रूप देखकर अपनी सुध-बुध भूल ही गई। उसकी सहेलियों ने संयोगिता से कहा कि लगता है यही पृथ्वीराज हैं। इस पर संयोगिता बोली, मेरा मन भी यही कहता है कि यही मेरे प्राणपति पृथ्वीराज हैं। मेरी हालत तो ठीक सांप छुछुंदर के समान हो रही है। इधर माँ पिता की ओर देखती हूँ तो दिल में अकथनीय वेदना उत्पन्न हो जाती है, उधर उनसे मिलने की भी इच्छा होती है। रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज के घोड़े के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला का एक मोती टूटकर लुढ़कता हुआ गंगा में जा गिरा। मछलियां उस मोती की ओर लपकी और उसे खाने की चीज समझकर आपस में एक दूसरे को हटाती हुई उस मोती को खाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर पृथ्वीराज ने धीरे धीरे उस माला के सारे मोती गंगा में डाल दिए। इसी समय संयोगिता की भेजी हुई दासी मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर पृथ्वीराज के पीछे जाकर खड़ी हुई और राजा पृथ्वीराज के हाथ में मुट्ठी भर भर के मोती देने लगी। अंत में उसने थाली और अपने गले के हार के भी सारे मोती दे दिए और पृथ्वीराज ने उन्हें गंगा में डाल दिया। जब मोती खत्म हो गए तब उसने अपने गले की पोत की लड़ी तोड़कर पृथ्वीराज के हाथ में दे दी। पोत देखते ही पृथ्वीराज चौंक पड़े। उन्होंने पीछे घूमकर देखा और उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम कौन हो। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जयचंद की राजकुमारी संयोगिता की दासी हूँ। इतना कहकर उसने इशारे से पृथ्वीराज को संयोगिता को दिखा दिया। संयोगिता उस समय खिड़की में खड़ी होकर पृथ्वीराज की ओर ही देख रही थी। संयोगिता को देखते ही पृथ्वीराज की हालत विचित्र हो गई। पृथ्वीराज ने अपना परिचय दासी को दे दिया। दासी ने इशारे में ही संयोगिता तथा सहेलियों को यह बात बता दी। उन सहेलियों को पता चलते ही कि यही पृथ्वीराज हैं, उन्होंने संयोगिता से कहा और फिर सबने सलाह करके उन्हें अपने महल में बुला लिया। रासों में लिखा है कि वहीं पर उनका गंधर्व विवाह हुआ। इसके बाद जब पृथ्वीराज अपने रुकने के स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए तो संयोगिता बहुत ही व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई। एक तो संयोगिता खुद ही पृथ्वीराज के दिल में बसी हुई थी, दूसरा उसकी यह हालत देखकर पृथ्वीराज व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि उनके सामंत इस समय शत्रु से युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ठहरना अनुचित है। इतने में ही सामने से गुरुराम आते हुए दिखाई पड़े। उन्हें देखकर पृथ्वीराज की जान में जान आ गई। असल में गुरुराम को कन्ह ने पृथ्वीराज की खोज में भेजा था। पृथ्वीराज ने गुरुराम को बुलाया और उनसे सारा हाल बताया। गुरुराम ने पृथ्वीराज को साथ लेकर अपने रुकने के स्थान पर लौट आने की इच्छा से कहा कि आप तो यहाँ श्रृंगार रस का सोता बहा रहे हैं, परंतु वहाँ युद्ध में लंगरी राय तो मारे ही गए, साथ ही इंद्र दमन, कुरंग, दुर्जन राय, सलक सिंह, परमार, प्रताप राय तोमर, भीम राय रघुवंशी, राय सिंह बघेला, राजा भानु राय आदि आपके सामंत भी मारे जा चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने कर्ण का पत्र पृथ्वीराज के हाथ में दे दिया। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज वहां से चल पड़े। पृथ्वीराज को रास्ते में ही जयचंद की सेना ने घेर लिया। जयचंद के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इस पर पृथ्वीराज ने बहुत ही वीरता दिखाई। गुरुराम ब्राह्मण होते हुए भी तलवार निकालकर शत्रुओं के सैनिकों पर टूट पड़े। अंत में किसी तरह लड़ते लड़ते पृथ्वीराज कर्ण के पास जा पहुंचे। जब कर्ण से पृथ्वीराज ने सारा समाचार कहा तब कर्ण ने कहा कि यह क्या कराए कि दुल्हन को वहीं छोड़ दिया। यह आपने अनुचित काम किया है। या तो आपको उसका हाथ ही नहीं पकड़ना था और जब पकड़ा तो उसे अपने साथ ले आना था। ये सुनकर पृथ्वीराज फिर से लौट पड़े। उनके साथ वीरवर गोयंद राय तथा कई और सामंत भी गए। पृथ्वीराज महल में जाकर संयोगिता को लेकर फिर से अपने स्थान की ओर चल पड़े। यह समाचार चारों ओर फैल गया और जयचंद की सेना पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। कन्नौज राज्य का रावण नामक कोतवाल जयचंद का एक सामंत था जो बहुत वीर था। जयचंद की आज्ञा के अनुसार रावण ने नगर भर में यह समाचार फैला दिया कि पृथ्वीराज संयोगिता को हरण करके ले जा रहे हैं, इसीलिए वह जहां भी मिलें उन्हें पकड़ लिया जाए। जयचंद ने पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए अपनी सारी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसकी तैयारी देखकर सब यही कह रहे थे कि आज पृथ्वीराज का कन्नौज से जीवित निकल जाना संभव नहीं है। रास्ते में जयचंद की सेना से पृथ्वीराज का फिर से सामना हुआ। इस समय गोयंद राय ने बहुत पराक्रम दिखाया। वह दोनों हाथों में तलवार लेकर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगे जिस तरह कोई गाजर मूली को काटता है। वीर गोयंद राय ने जयचंद की सेना में हलचल मचा दी। उसने बहुत सारी सेना काट डाली। इस तरह एक पहर तक बहुत वीरता दिखाकर अंत में गोयंद राय मारा गया। अब पजुन राय आगे बढ़ा। उसकी सहायता के लिए केहरी राय, कंठीर परमार और पीपा राय परिहार आदि कई सामंत आगे बढ़े। भयानक युद्ध हुआ। पजुन राय भी लड़ता लड़ता मारा गया। उसने अपनी वीरता से जयचंद की मुसलमानी सेना को बहुत हानि पहुंचाई। इस समय शाम होने लगी थी, परंतु युद्ध आज रुकने वाला नहीं था। पजुन राय की मृत्यु के बाद चंद पुंडीर आगे बढ़ा। उसने भी शाम तक युद्ध किया और शाम होते होते वो भी मारा गया। इसी तरह कई सामंत मारे गए। अंत में नरना कन्न ने तलवार पकड़ी। कन्न ने आज के युद्ध में अपना जो पराक्रम दिखाया, जो वीरता दिखाई और जिस तरह शत्रुओं को युद्ध का मजा चखाया, उसका वर्णन कवि चंद ने बहुत ही ज्वलंत भाषा में किया है। उसने लिखा है कि कर्ण की तलवार के घाव खाकर शत्रु की सेना के बादल के समान शरीर वाले हाथी बादलों की तरह ही गरज उठते थे और युद्ध क्षेत्र में लेट जाते थे। इसी तरह शाम हुई। सारे सामंतों ने संयोगिता सहित पृथ्वीराज को बीच में किया और बैठकर धीरे धीरे विचार करने लगे कि अब क्या करना उचित है। सब कवि चंद को दोष देने लगे और कहने लगे कि इसी भाट के कारण आज यह मुसीबत आई है। इस समय पृथ्वीराज के सामंतों की लाश युद्ध क्षेत्र से लाकर एक स्थान में रखी गई थी। पृथ्वीराज रो रोकर उन लाशों से चिपक रहे थे और माथा पीट रहे थे। तभी कवि चंद ने पृथ्वीराज को समझाया और कहा कि जो होना था वह तो हो गया, अब आगे के लिए क्या सोचा है। इस समय जैसे भी हो महाराज को यहाँ से बेदाग निकालकर दिल्ली पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद हम लोग शत्रु की सेना से निपट लेंगे। यदि सब मारे जाएंगे तो भी कोई चिंता नहीं है, सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। सामंतों ने पृथ्वीराज को बहुत समझाया कि आप संयोगिता को लेकर दिल्ली चले जाएं, परंतु वे जितना उन्हें समझाते गए उतना ही पृथ्वीराज गुस्सा होते गए। सारे सामंत यह देखकर बहुत दुखी हो गए। सुबह होते ही पृथ्वीराज घोड़े पर सवार हो गए। संयोगिता उनके पीछे बैठ गई। सैनिक तथा सामंत ने उन्हें चारों ओर से घेर कर दिल्ली की ओर चल दिए। इधर कन्नौज की सेना भी उनका रास्ता रोकने तथा पृथ्वीराज को गिरफ्तार करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कन्नौज की सेना पृथ्वीराज को पकड़ना चाहती थी और सामंत उनकी रक्षा करना चाहते थे। अपने इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर दोनों सेनाओं के वीर जान हथेली पर लिए युद्ध कर रहे थे। वे इसी तरह युद्ध करते और आगे बढ़ते जाते। इसी तरह लगातार दो दिनों तक युद्ध होता रहा। पृथ्वीराज के सामंत तथा सैनिक उन्हें घेरे हुए दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे थे और जयचंद की सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। इसी तरह युद्ध होते होते कर्ण भी मारा गया। पृथ्वीराज के 64 सामंत मारे गए। बहुत मुश्किल से किसी तरह पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे और राज्य के इतने स्तंभों को गवाकर उन्होंने संयोगिता से विवाह किया।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।